हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 143। अक्षय को अभी तक केवल अनुमान ही था। उसे ये भी नहीं पता था कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इसलिए उसने थोड़े संकोच से कहा, हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे पता करना होगा कि क्या सच में उनके बीच ऐसा कुछ है या फिर वो सब सिर्फ मेरी गलत फहमी थी। मिशिका ने अक्षय की उलझन देखकर कहा, हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इस बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि बिना पूरी बात जाने किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही गलत होता है। अक्षय भी समझदार था। वो अपने घर में सबसे बड़ा था, क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो ऐसे किसी भी फैसले लेने लायक नहीं थे, और वे लोग अपने पिता को तनाव में भी नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए अक्षय ही सारे मामले देखता था। अक्षय ने एकदम गंभीर होते हुए कहा, हाँ पहले मुझे देविका से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं उस लड़के के बारे में कुछ पता कर पाऊंगा। मिशिका ने सहमति देते हुए कहा, सही है, तुम उसके साथ बात करो, और अगर वो तुमसे कुछ शेयर करती है तो तुम उसे बताना कि तुम हमेशा उसके साथ हो और उसके निर्णय में उसे सहयोग करोगे, तभी वो सहज होकर तुम्हें पूरी बात बताएगी, नहीं तो फिर वो ये बात छिपा भी सकती है। अक्षय अभी देविका से बात करने जा ही रहा था, लेकिन मिशिका की बात सुनकर वो अपनी जगह पर रुक गया और देविका के कमरे की ओर नहीं गया। अक्षय को इस तरह रुका हुआ देखकर मिशिका असमंजस में थी और अक्षय की ओर ही देख रही थी। अक्षय ने उसकी ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं उसे थोड़ा समय देता हूँ, हो सकता है कुछ समय में वो खुद ही मुझे ये बात बता दे कि वो किसी के साथ है, नहीं तो अगर अब मैं उसे फिर किसी के साथ देखूंगा तो मैं उसे वहीं सामने जाकर पूछ लूंगा। इस बातचीत के बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक नई समझ के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। देविका की खुशियों की परवाह करते हुए अक्षय और मिशिका ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। मिशिका खुश थी कि वो अक्षय को समझा पाई और इस वजह से अक्षय और देविका के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, वो बस यही चाहती थी। मिशिका ने ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उसे यही लगता था कि जब किसी बात का सही समय होता है उसी वक्त वो बात करनी चाहिए, और अगर अभी अक्षय खुद से रुक रहा है तो हो सकता है ये सही समय ना हो। उसे भी ऐसा लगता था कि अगर सच में ऐसा कोई मामला होगा तो देविका खुद ही शायद अक्षय को पहले ही बता देगी। वहीं दूसरी ओर देविका कपड़े बदलकर अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन जब उसने अक्षय और मिशिका की बातें सुनी तो वो दरवाजे के पास ही रुक गई और उनके बातें सुनने लगी। उसे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से मिशिका उसके समर्थन में बोल रही थी, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई से ज्यादा मिशिका उसकी तरफदारी करेगी, और वो अक्षय को भी समझ रही थी। ये बातें सुनकर देविका के मन में मिशिका को लेकर जो गलतफहमी थी वो दूर हो रही थी, और देविका समझ गई थी कि मिशिका बहुत अच्छी लड़की है और शायद उसके भाई के लिए एकदम सही है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। देविका और कार्तिक ने आज ही अपने रिश्ते को एक दूसरे के सामने स्वीकार किया था, इसीलिए देविका भी अभी घर में बात करने में सहज नहीं थी, और अक्षय ने भी उसे समय देने के बारे में सोचा तो देविका थोड़ा आराम महसूस कर रही थी और मिशिका की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। देविका के दिमाग में मिशिका की जो अब तक छवि थी वो एकदम बदल चुकी थी, और उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप सच में मेरे भाई के लिए एकदम परफेक्ट हो भाभी, और आज से मैं आपको दिल से अपनी भाभी स्वीकार करती हूँ। मेरे मन में अब आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात अभी शायद मैं आपके सामने ना बोल पाऊँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने भाई को कितनी अच्छी तरह से समझाया। देविका बस बात की कुछ बातें ही सुन पाई थी, लेकिन उससे ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि मिशिका बहुत अच्छी लड़की है। शुरू की बातें वो नहीं सुन पाई थी, और इसके बाद उसने कार्तिक से फ़ोन पर बात करने का फ़ैसला किया। वो उसे इस बारे में बताना चाहती थी कि उसके भाई को उन दोनों के बारे में शक हो गया है, इसीलिए वो कार्तिक से बात करने वापस अपने कमरे के अंदर चली गई। अपने कमरे में आकर उसने तुरंत ही अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कार्तिक का नंबर डायल करने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से कार्तिक ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया, और कुछ देर बाद उसका नंबर व्यस्त बताने लगा तो देविका चिढ़ गई। देविका ने गुस्से में अपने मोबाइल फ़ोन पर लिखे हुए कार्तिक के नाम की तरफ देखते हुए कहा, आज ही प्रपोज़ किया और बस शुरू हो गया इसका भी वही जो सारे लड़के करते हैं, मुझे लगा था कि ये अलग है, लेकिन नहीं, देखो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ व्यस्त है। कार्तिक का नंबर उसने अपने मोबाइल फ़ोन में के का नाम से सेव किया हुआ था। अभी देविका उसी की तरफ घूर घूर कर देख रही थी और कार्तिक का कॉल ना रिसीव करने पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। रात का समय था। अंबिका नीले रंग की साड़ी पहनकर अकेली अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चमकता हुआ चांद पूरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी चांदनी रात थी जिसकी रोशनी अंबिका पर पड़ रही थी। इसके अलावा बालकनी में उसने कोई भी लाइट नहीं जला रखी थी। साथ ही ठंडी हवा उसके बालों को हल्के हल्के हिला रही थी। उसकी आंखें दूर आसमान की ओर देख रही थी, लेकिन मन कहीं और था। वेदांश के साथ बीते उन लम्हों में जहां वो खुद को खो चुकी थी, वो सोचने लगी कि क्या ये सब सही है? क्या उनका रिश्ता कभी किसी मंजिल तक पहुंच पाएगा, या ये बस एक ऐसा रास्ता है जिसका कोई अंत नहीं? उसके मन में ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल चल रहे थे और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, जब अचानक उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अंबिका की आंखें हल्के से बंद हो गईं, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये हाथ किसका हो सकता था। वेदांश उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। उसने बिना एक शब्द कहे धीरे से अंबिका की कमर को अपनी बाहों में जकड़ा और उसकी गर्दन पर हल्की से चुंबन कर दी। वेदांश के इस तरह गर्दन पर चूमते ही अंबिका के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से वेदांश के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गईं और वो उस पल में खुद को पूरी तरह से डूबने लगी। क्रमशः, क्या लगता है आप लोगों को, अंबिका के सवाल जायज हैं या फिर नहीं? क्या चाहती है अंबिका, और क्या वो कभी जान पाएगी वेदांश को? क्या वेदांश कभी बताया उसे अपने बारे में? और क्या हो पाएगा इन दोनों का रिश्ता परमानेंट? और क्या दूर होगी अंबिका की ये असुरक्षा? कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, बताइए कमेंट सेक्शन में।